ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। बुंदेलखंड में सुनियोजित और सतत विकास को लेकर एक तरफ 36,000 एकड़ भूमि क्षेत्र में नया औद्योगिक शहर बसाने के लिए शासन की कवायद जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सबसे लंबे सोलर पार्क को भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। करीब 1700 हेक्टेयर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे इस सोलर पार्क को विकसित किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार यूपीडा के पास जमीन मौजूद है। ये भूमि इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के मुख्य कैरिज वे और सर्विस रोड के बीच की है। मुख्य कैरिज वे और सर्विस रोड के बीच उपलब्ध भूमि की औसत चौड़ाई 15 से 20 मीटर है। यहीं पर सोलर पार्क को निर्मित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस प्रोजेक्ट को लेकर तत्पर हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर विकसित होने वाले सोलर पार्क से 450 किलो मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा, जो करीब 1,00,000 उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने सरकारी आवास पर मंत्रियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को सप्ताह में 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास करने के लिए कहा है। इसके साथ ही एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संबंधित जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ 1 से 2 मंत्रियों को सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभारी मंत्री कार्यकर्ताओं से बात करने पर फोकस करें, हर बूथ को मजबूत किया जाए। प्रदेश के 16 जनपदों में बाढ़ का कहर जारी है। लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से इन जनपदों में रहने वाली 6,00,000 से अधिक की आबादी का जीवन बाढ़ की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। 1,50,000 हेक्टेयर से अधिक की खेती भी बाढ़ में डूब गई है। प्रदेश के लखीमपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, अयोध्या, बहराइच, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलिया, बदायूं, देवरिया, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली और बाराबंकी के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 15 कंपनी एनडीआरएफ, 16 कंपनी एसडीआरएफ और 31 कंपनी पीएससी फील्ड बटालियन तैनात की गई है। लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। देवशयनी एकादशी का पर्व आज श्रद्धा और भक्ति के माहौल में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। वाराणसी में भी पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
आज देवशयनी एकादशी है। धर्म की नगरी काशी में देवशयनी एकादशी का काफी महत्व है। मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तब इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान 4 महीने तक सनातन धर्म में मांगलिक कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। इसका समापन 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी के साथ समाप्त होगा। मान्यता के मुताबिक इस दिन श्री हरि की उपासना करने से जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। वाराणसी के गंगा घाटों पर भी लोगों ने बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए घाट किनारे ही गंगा स्नान कर दान किया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रदेश भर में मुहर्रम का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। हर करबला के बाद मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन को याद करते हुए इस्लाम में ये पर्व मनाया जाता है। इसके अंतर्गत सभी जनपदों में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में ताजिया बनाकर जुलूस निकाला जा रहा है। इसी क्रम में रामनगरी अयोध्या में भी मुहर्रम के 10वें दिन शहर के बड़ी बुआ स्थित करबला में ताजिये दफनाए गए। शहर के जितने भी अंजुमन हैं वे सभी जुलूस निकालकर करबला पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने जुलूस व करबला की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उधर आम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, वाराणसी, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा समेत विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर आज सुबह गंगा में स्नान करने आए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि उनके साथ आए 2 अन्य युवकों को अचेत अवस्था में बाहर निकाल लिया गया। 4 युवक गहराई में साथ साथ नहा रहे थे कि अचानक नदी के तेज प्रवाह में बहने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद 2 युवकों को अचेत अवस्था में पानी से बाहर निकाला गया। वहीं 1 घंटे की तलाश के बाद 2 अन्य युवकों का शव गंगा से बरामद किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।